ओम शांति।
ओम शांति।
बाबा ने ग्रुप नंबर 4 में बताया कि खुशियों का युग है, संगम युग अर्थात खुशियों का युग, मौजों का युग। इसमें अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? इस तरीके से बाबा ने हम सबको शिक्षाएं दी है। सदा यह नशा रहता है कि हम भाग्य विधाता के बच्चे, भाग्य विधाता बाप बन गया और क्या चाहिए। सब चाहने पूरी हो गई और रही हुई है। नशा सदा बढ़ता जाता है या कभी कम होता है। माया तो अंत तक आनी ही है, क्योंकि माया नहीं आए तो माया जी कैसे कहलाएंगे। तो माया का काम आना ये तो होना ही है, लेकिन आपका काम है माया जी बनना। माया जी हो या कभी हार कभी जीत, अभी बहुत काल से माया जी बनने का समय है। माना अभी ये समय है कि हार जीत का चक्कर पूरा हो जाए, सदा जीत के रहने का। हार कभी जीत, सदा माया जीत। अभी हिंदी नहीं समझते हो, बाबा ने हिंदी भाषा के ऊपर फोकस किया है। फॉरेनर्स के ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं,
मुरली मनोहर जी पढ़ रहे हैं।
क्योंकि संगम युग में जाना, सतयुग में जाना है, वहाँ आपकी ये भाषा नहीं होगी। आप सबकी आदि भाषा हिंदी है ना, तो बोलना नहीं, तो बोलना नहीं भी आवे तो समझना तो आवे ना। बाबा ने यहाँ एक आइडिया लगाया है, हिंदी भाषा बोलो बोल के बाबा ने टाइप नहीं किया, सीखो बोलते है, समझने की कोशिश करो। अगर समझने की अगर हम कोशिश करेंगे तो बोलना तो आ ही जाएगा। इसीलिए बाबा ने टाइट ना करते हुए एकदम सुप्रीम टीचर के रूप से युक्त बोल बाबा ने प्रस्तुत किया है। तो कौन हिंदी समझता है, हाथ उठाओ। पूरे नस के लिए बोला बाबा ने। उसमें समझने के लिए पुरुषार्थ करो, क्योंकि बाप जिस भाषा में बोलते हैं वो भाषा तो समझनी चाहिए ना। वैसे तो देखो, अगर इंग्लिश बोलने वाले माँ बाप होंगे तो बच्चे भी क्या सीखेंगे, इंग्लिश तो सीखेंगे। तो बाप भी भाषा तो, बाप की भाषा तो समझनी चाहिए। अच्छा, सदा खुश रहने वाले हो ही, बाबा ने दावा करके बोला, सदा खुश रहने वाले तो हो ही। खुश रहने वाली आत्मा बाप को भी प्यारी लगती है, क्योंकि बाप सदा खुश रहने वाले हैं, खुशी के सागर हैं। तो बच्चे भी खुश रहते हैं तो बाप को भी खुशी होती है। दुखों को सदा के लिए विदाई दे दी है ना, या कभी कभी निमंत्रण दे देते हो, माना विदाई दिया है, या तो कभी कभी बुला लेते हो। दुख की दुनिया से निकल चुके, दुखद अंश में रहते हो क्या? कहाँ रहते हो? संगम युग पर, दुखदामे नहीं। दुनिया वाले दुखदामे हैं, लेकिन आप संगम युग, खुशियों का युग, मौजों का युग उसमें हो। ऐसे है, कभी गलती से दुखदामे तो नहीं चले जाते, कभी थोड़ी थोड़ी दिल होती है। तो सदा रहता है कि हम संगम में ही श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसीलिए ब्राह्मणों को सदा ही ऊंची चोटी दिखाते हैं। तो जैसे ऊंचे से ऊंचे गाये हुए हो, वैसे सदा ऊंची स्थिति भी हो, साधारण स्थिति नहीं, सदा ऊंची स्थिति। कभी साधारण स्थिति में तो नहीं आ जाते। बाप मिला, सब कुछ मिला, यही स्मृति सदा ऊंची बना देती है। ये सदा याद रहता है ना, ये ऑटोमेटिक गीत बजता ही रहता है ऐसा। अच्छा, ये ऑटोमेटिक गीत बजता ही रहता है तो कितना सहज और सर्व प्राप्ति कर ली। मेहनत करनी पड़ी थोड़ी थोड़ी मेहनत लगती है। टाइटल ही है सर योगी। कोई अपने को कहता है मैं मुश्किल योगी हूँ। दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, और आप क्या कहते हो? घर बैठे बाप मिल गया, बाप के घर में तो पीछे आते हो। पहले तो घर बैठे बाप मिला, इतना सहज सोचा नहीं था, लेकिन मिल गया। तो सदा यही याद रखना कि हम भाग्य विधाता बाप के बच्चे हैं, सदा अपना भाग्य याद आने से खुश रहेंगे और खुशी बांटेंगे। तो ये मुरली का टोटल मसला है। तो इसमें बाबा ने 19 बार क्वेश्चन मार्क लगाए थे, और इतना क्लोजिंग से बाबा अपने बच्चों से मिल रहे, ऐसे लगता है कि बाबा जैसे कि दुनिया में तो गुरु लोग होते हैं, तो दूसरा कोई उसके पीछे आ जाता है तो इधर काम निपटाने का धंधा करते हैं, पर पूरा ठीक रीति से कर भी नहीं पाते हैं। दोनों तरफ व्यवहार को बरोबर संतुलित नहीं कर पाते, लेकिन बाबा ने बैठ के उसके आगे जब जो है वही है, बाद में जो आएगा देखा जाए। इस हिसाब से बाबा ने क्वेश्चन करते हुए उसका फिर उत्तर देते हुए पूछते हुए बच्चों को अपनापन का अनुभव तो संपूर्ण रूप से कराए होंगे। इसीलिए सभी को यह नहीं लगता है कि बाबा मेरे से दूर है, बाबा मेरे को नहीं पहचानता है, मैं इतना दूर से आया हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं, ऐसा फीलिंग उन्हें बाबा नहीं देता है। इसीलिए आज तो बेहद ही हमारे परिवार इतना बेहद बड़ा हो गया है, तो बचपन में भी देखा जाता है जैसे बच्चे होते हैं तो माँ बाप पूरा खूब ध्यान रखते हैं, जब अपने टांग में खड़े होकर चलने लग जाते हैं तो फिर ये छोटों का उसे उसके पीछे आने वाले धोतरों पोतरों का ध्यान रखा जाता है। सदा ही हम छोटे बच्चे बन करके ही चलने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो नाराज होने का मार्जिन ज्यादा रहता है। इसलिए उस जमाने में दादियों ने इतने सारे मधुबन वासियों को कितना प्यार पालना स्नेह देकर के चलाए बढ़ाए, तो आज मधुबन के नाम पर तो कोई दादियां है नहीं, नीचे से ही दादियां ऊपर आती है। तो फिर भी हम लोग को जिसने उस समय जम के अपनी स्थिति बनाई है उनको तो ये फीलिंग नहीं होता है कि दादियां नहीं हो हम लोग को भी पालना देनी पड़ती है, सदाई पालना लेते रहेंगे तो देंगे कौन। इसलिए यहाँ कई सारे भाई बहनों को हम देखते हैं, बड़ों को कोई तो बाप समान बन के पालना देते भी हैं, तो कोई कोई ने वो स्थिति बना नहीं पाए होंगे, तो उसमें भी आज जो माया के रावण की जायदाद है वो भी कभी कभी यूज हो जाता है, तो कई सारे डिस्टर्ब होके भी यहाँ से जाते हैं। तो कोई के लिए तो जीवन के लिए बहुत अच्छी रास्ता मिल जाती, सपोर्ट मिल जाता है, तो आगे भी उन लोग आते जाते रहते हैं। जैसे हमारे 99 या कुमारों की बहुत बड़ी जथा मरसान के वन में लगी थी, और उसमें 9-10 हजार भाई बहनों से बाबा मिले थे। तो उस ग्रुप में हम लोग मधुबन में आते वक्त हमारे तरफ से 20 लोग आए थे, तो हमें टोटल मिला के हम लोग 20 लोग यहाँ सेवा में रुकने वाले थे। तो आज हम देखते हैं वो जो 80 जाना का जो जत्था था जो सेंटर पर रुक गए वो तो रह गए, तो उसके बाद तो यहाँ से जो भी गए कहाँ गए किधर गए, और मैं देखता नहीं उनको क्यों नहीं आ रहे हैं, कहाँ गए क्या कर रहे हैं। तो कोई कोई का समाचार जरूर आता है कि उन्होंने जिस प्रकार से जिस भावना से बाबा को प्राप्त करने की कोशिश की थी वो तो बाबा ने अपने तरफ से तो पूर्ण रूप से बच्चों को दे ही दिया है, लेकिन बाबा कहते अपने घोट तो नशा चढ़े, तो आपने तो जिन्होंने घोट के वो ज्ञान गुण शक्तियों को जीवन में अपना आधार नहीं बनाया, दूसरों को प्यार पालना और सम्मान मान के आधार से हम चलते रहे, तो उन आत्माओं को सदा उत्तम पालना तो मिल नहीं पाती। तो बड़े आते हैं तो छोटों को फिर मार्गिंग में चांस देना पड़ता है। तो इस तरीके से वो आत्माओं को जिस तरीके से सम्मान नहीं मिला तो आज कौन दुनिया में है कभी पता नहीं चलता है। तो कभी हम लोग गाँव जाते हैं तो पता चलता है कि वो व्यक्ति पुरानी दुनिया में चला गया है, तो इस कारण से कोई कोई पुराने जो जाते हैं तो आते भी हैं मिलने के लिए, तो उनके दिल में इतनी पश्चाताप होती है कि हमने जाने अनजाने क्या काम कर बैठे, तो उनको बहुत दुख होता है और उनकी दुख दर्द हमको भी लगता है। तो मैंने एक दिन ऐसे संकल्प किया तो हर प्रकार के हमारे आदि रतन दादियों का तो किताब बनते हैं, विदेश में भी कई प्रकार के बुक्स बनाए जा रहे हैं, आगे आने वालों के लिए कुछ सपोर्ट मिल जाए। तो इसी रीति से एक दिन संकल्प आया कि जो भगोड़े जो बाप को छोड़ के चले गए वो आत्माएं जिस तरीके से धुलाई खा रहे हैं दुनिया में, रो रहे हैं चिल्ला रहे हैं, तो उनके भी उनके समीप और करीब जाकर के उनसे भी अच्छी रीति से इंटरव्यू लेकर के तो इस प्रकार की बुक बनाई जाए, आने वाले कुमारों के लिए इतना अच्छा सपोर्ट मिल जाता होगा
भगोड़ा बुक।
तो इस कारण से मेरे को भी लगता है। तो एक भाई जी हमें अनुभव सुना रहे थे, ये महाराष्ट्र साइड के है, तो हमारे जहाँ पर सेंटर खुला था वहां पर डेली एक भाई आकर के बाबा ने दिया है अनमोल खजाना करके वो गीत डेली बजता था, तो भाई आकर के सेंटर के नजदीक बैठ करके डेली रोता था, डेली तड़प तड़प के रोता था। तो उनको दो चार दिन तक कनेक्शन में नहीं आया, रो के चला जाता था वो। तो बाद में फिर 7 दिन के बाद में एक बहनों ने कोशिश करके उसको बुलाया और टोली वोली खिला के पूछा गया कि भाई तुम ये डेली आकर के इस प्रकार की क्या कर रहे हो। तो भाई ने क्या बोला कि बहन जी को दिल खोल के बोला तो मैं भी पहले 15-20 साल तक ज्ञान में चला हूं, तो कारण अकारण ये सब बातें हुई है, बाबा से पर्सनल टोली लिए है और बाबा से हाथ मिलाए थे कि मैं बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ूंगा। तो आज हमारी पुरानी दुनिया में ज्यादा आकर्षण बढ़ी तो आज पुरानी दुनिया में चले गए। ये गीत बजता है तो मेरा हृदय विदीर्ण होता है, इसलिए मैं यहाँ करके रोता हूँ और तो कोई चारा है भी नहीं। तो इस तरीके से आज सभी दुनिया में देखा जाता है, पुराने पुराने जो सेंटर में जब से पहले शुरू शुरू में स्वयं देने वाले जितने भी थे, तो इसीलिए भगवान ने बोलते हैं खुशियों का युग है, मौजों का युग है। इसमें अगर हमने खुशी और मौज किसी दूसरों से किसी वस्तु व्यक्ति साधन पदार्थ के उसके द्वारा लेने की कोशिश करते हैं, हम अपने अंदर नहीं घुसते हैं, अपने को अंदर से वो चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो एक दिन वो व्यक्ति कहीं ना कहीं से खिसक जाएगा ही,
बड़ा घोषित हो जाएगा, बड़ा घोषित हो जाएगा।
तो इसलिए हमें जो बातें समझ में आनी चाहिए कि बाबा ने तो संपूर्ण ज्ञान में आने से ही सब बातें दे ही दिया है, लेकिन तो बातें अब हमको खुद ही अपने ऊपर डालना होगा। जैसे सचिन डॉक्टर कहते रहते हैं, ये बातें मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि चिंतन और समझ के आधार से ही सारी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है, दूसरा कोई चारा नहीं। तो समझ बहुत बड़ी बात है, ज्ञान की गहराई में जाने से ही समझ बढ़ती है और वो अपना खजाना बन जाता है। तो आज दादियां कितने बार हमारी दादी जाने के जरिए सारी बातों को चिंतन करके अपना खजाना बनाया, जब चाहे जिस घड़ी चाहिए उसको निकाल करके जो सबको प्रस्तुत करती है, ज्ञान की इतनी बारीकी से गहराई में गई है। तो इसी तरीके से अभी हम सबको भी ये काम करना पड़ेगा, वरना खुश रहने के लिए हम कितना भी कोशिश करेंगे तो ब्राह्मण की आज सबसे नौजवान यूथ को तो ये बातें समस्या बन चुकी है, इंटरनेट मोबाइल। तो आज इस मास के ज्ञानमृत में लिखा था माया का इंटरनेट या तो माया का गेट
मालूम पूछे
पूछे
तो सब समझो मधुबन में इतने इंटरनेट और टीवी चल रहे हैं, इसके लिए हम क्या करें?
मेन चीज तो सबसे
मैं
पूछ रहा, बात अच्छी बात है, आपकी बातें सुन के मेरे को ये बातें जरूर याद आ गई।
मैं हमेशा सोचती
हूँ ठीक है,
मैं क्या करूँ।
तो क्या है कि यहाँ पर हम सब क्या है कि यहाँ बाबा के घर में तो सबसे पहले तो हम जितना उस बातों से किनारा होंगे उस बातें से दूरियां बनाएंगे, तो दूरियां हम जैसे बनाते जाएंगे तो कुछ संगठन बनाना भी पड़ेगा और सभी से इस प्रकार के वाइब्रेशन बाबा को बोल करके हम सब बाबा से कनेक्टेड होकर के वाइब्रेशन दे और उससे नफरत पैदा करे, घृणा पैदा करे, तभी इस बातों से किनारा हो सकता है। सबसे पहले तो हम खुद ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि आदत तो पहले हमारी बन जाती है और वो तो वहीं मिलते हैं जहाँ पर हम जा करके देखते हैं। तो छोटी छोटी बातें पहले तो जैसे कि क्रिकेट में इंटरेस्ट होती है, थोड़ा थोड़ा देखते देखते हम भी आदि हो जाते हैं, तो हम किसी को बोल भी नहीं सकते और पूरे रूप से किसी को कहना बोलेंगे तो यार तुम भी तो कल देख रहा था कि भाई शांतिवन में कह रहा था कि शांतिवन में एक भाई की क्लास थी, बड़े वरिष्ठ भाई की, तो उससे मिलने गए थे। तो मिलते वक्त वो भाई लोग तो टीवी देख रहे थे, तो फिर वो आने के बाद में टीवी सी बंद करके उन सबसे मिले। लास्ट में उनका टोटल लेक्चर टीवी नहीं देखने का था क्योंकि
रिसेप्शन में टीवी निरंतर चलता, तो लेकिन मैं नहीं देखती अपने में या कुछ में
अपने
या कुछ भी,
तो जितना ज्यादा
लेकिन इससे भी और क्या कर सकते।
दूसरों को टीवी देखते हो, अगर हम देखते हैं तो हम भी देख रहे हैं।
नहीं हम नहीं देखे, मैं नहीं देखती हूँ।
सही बात है, फिर उसमें भी जैसे कि
मैं इतना तो मैं करती हूँ,
बरोबर
वो चल रहा है, मैं अपने में ये करती हूँ और जो भी सेवा है।
लेकिन
और क्या करना है?
हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी तो क्या है कि अपने को ऊपर ही ध्यान देना जरूरी है। किसी को शिक्षा देने जाएंगे तो उससे जबरदस्ती शिक्षा हमको मिल जाती है, इसलिए हम जितना गहराई में जाकर अपने को देखे और अपने को ही सुधारने की जरूरत है। क्योंकि एक छोटी सी बात है, जैसे कि एक भाई को दिन रात मोबाइल में इधर और इधर करते हुए मैं देखता हूँ। तो एक दिन बोला से चलते फिरते भाई समझ के ही बोला मैंने कि थोड़ा सा ऊपर भी इधर उधर करो ना बाबा के साथ ऐसे बोला उसको। तो उसने 10 दिन से मेरे को ट्रेंडिंग कर रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है। तो मैंने कान पकड़ के बोला बाबा मैं किसी को बोलूंगा नहीं,
आपके
उसके प्रति अगर मैं जो बाबा ने रखा होता, तो बाबा ने तो था ही था लेकिन मन से नहीं रखा, मुख से रख दिया, इसीलिए अभी तक भी वो मेरे को नहीं छोड़ता। इसीलिए जरूरी है कि पहले शिक्षक हम उस बातों से कितना दूरियां बनाते हैं। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि खुशियों का जो खजाना बाबा ने हमको दिया है, तो यहाँ चर्चा कई बार हो चुकी है, अगर खुशी ऊपर वालों से नहीं मिलता है तो किसी किसी से कहीं न कहीं से आधार तो ढूंढते ही है उसको, तो आधार आगे जा करके जीवन को ही निराधार बना सकता है। इसलिए ज्ञान में तो अभी एक बात है बहुत अच्छा मेरे को लगा, तो योग में चिंतन का प्रयोग करना, तो योग में चिंतन का प्रयोग करता मनन शब्द बहुत अच्छा लगा। तो योग में मन को ऑन करके जो बैठ जाता है वो नेचुरल उसको कभी झुटका कई प्रकार की बातों से मुक्त हो जाता है और सर्व प्राप्ति से संपन्न हो जाता है। आप एक बार खड़े होकर देखेगा कि जो भी व्यक्ति नीचे सिर झुका करके या तो झुटका ले रहा है उसका मन ऑफ हो गया है, मन ऑन नहीं है। तो मन को जितना हम ऑन कर करके एक्टिव करते हैं, कोई बातों को फोकस करके चिंतन करके उसकी गहराई में जाते हैं, तो नींद आने की मार्जिन कम रहती है। लेकिन ये हम कह नहीं सकते कि मुझे नींद नहीं आता है, क्योंकि सदा तो एक ही जैसा नहीं होता है, कभी कभी ऊपर नीचे होता है। इस समय फिर दूसरों को 50 लोगों को बोलने की मार्जिन हम क्यों दें? इसीलिए ये भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अभी एक भाई कह रहा था कि मुझे तो घर परिवार कोई याद नहीं आता, बोल के 5-6 दिन सुना रहा था। मैंने बोला 5-6 दिन से तो तुम घर की बातें कर रहा है, घर को तो याद सबसे पहले तेरे को आना है। उसको मैंने सीधा बोला अभी तेरे बुद्धि से घर भी परिवार मेरा ये छोटा भाई ये है वो बोल के सुनाना बंद करोगे तब मैं मानूंगा कि घर से तुम्हारा नष्ट हो गया है। नहीं तो डेली हम वो धंधा कर रहे हैं और बातें भी घर के कर रहे हैं, इसलिए इसमें थोड़ा परहेज रखने की जरूरत है। क्योंकि सभी चाहते हैं कि जीवन में खुशी मिले, शांति मिले। आज तो संसार में देखिए खुशी के लिए क्या नहीं कर रहे, लेकिन खुशी के सागर के साथ में कनेक्शन नहीं है, इसलिए वो आर्टिफिशियल हो जाता है, सुपरफिशियल हो जाता है। इसलिए नेचुरल खुशी के सागर के साथ में हम जितने गहराई में जाते हैं उसी अनुसार से वो चीज हमको मिलता है। तो अभी एक दिन तो ऐसा अनुभव हो रहा था कि योग के टाइम में जो चिंतन का प्रयोग, कोई टॉपिक का प्रयोग करके हमने गहराई में जाने के लिए थोड़ा अपने को सचेत किया, तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए। तो वो अनुभव के आधार से तो मैं कह रहा था कि हम 20-22 साल से जब ज्ञान में चल रहे थे, उसी समय से अगर ये खजाना हमको मिल जाता या अनुभव हो जाता तो हम कितने अनुभव खानों से भर जाते होंगे। लेकिन वो भी समय जब तक नहीं आता है तब तक हम कोशिश ही करते रहते। इसीलिए अभी हम सबको थोड़ा सा इस बातों का अटेंशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि खुशी तो ओरिजिनल खजाना है। हम जहां भी आज संसार में खुशी तो कई प्रकार के होते हैं, कोई जम के हंसते मुस्कुराते आवाज करते हैं उसको भी खुशी कहते हैं, लेकिन उसे रज प्रदान या तम प्रदान कहा जा सकता है। इसीलिए मम्मा का जो मुस्कुराना होगी हम सबको अगर आ जाए तो उसको सतत प्रदान खुशी। और खुशी माना ये प्रकट करके हम ये आवाज के भाषण मारने की बात नहीं आती है। हम नेचुरल जितना खुशी प्रकार के टेंशन तनाव न हो अंदर से, और कोई भी समस्याएं आती है तो सबसे पहले उस समस्याओं का जड़ उसका टोटल खान तो हमारे अंदर ही है। बाहर से तो सिर्फ रिमोट ही दबाता है परिस्थितियां, फिर अंदर का जो छिपा हुआ है वो एक्टिव हो जाता है। तो फिर वो छिपा हुआ बाहर के साथ ताल मिला के संकल्पों का एक लहर तैयार करता है नेगेटिव रूप से, तो हमको फिर दुखी करता है और हमारी सारी खजाना छीन लेता है। इसीलिए हम सबको सबसे पहले तो कोई भी समस्याओं का हल बाहर नहीं अंदर जाके ढूंढना पड़ेगा, और उसके प्रति कई प्रकार की लॉजिकली देनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा, उसकी गहराई में जाके कहना पड़ेगा कि मैंने जाने अनजाने में मैंने किया गया था, ये सॉफ्टवेयर बन गया, अभी उस सॉफ्टवेयर को फिर डिलीट करने की जरूरत है। नहीं तो हम कितना भी कोशिश करते रहेंगे उस अंदर का जो चीजें हैं हमको दुखी करता है। तो इसे प्रैक्टिकल में अगर कह जाए, पहले समस्या बना हुआ था मेरा रूम में रहते रहते, मेरे रूम में जो है साथी वो कई प्रकार की बीमारी से ग्रस्त होने के कारण से वही है, तो जो बातें ज्यादा होती है जो हमारा नींद हराम कर देता है, तो वो टेंशन का तो रूप ले लेता है। तो अभी मैंने इसका प्रयोग करने के कारण से अभी वो मैं समझता हूँ उसके कारण से थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ने का माध्यम मिल रहा है। तो सबसे पहले कमरे में उड़ता हूँ तो उड़ तो सोए रहते हैं, लेकिन उसको शुभ भावना और आत्मिक दृष्टि का प्रयोग वहीं से शुरू करता हूँ मैं। तो उसके कारण से फिर बाहर की कोई भी बातें बाहर निकलते हैं तो उसका लहर बन जाता है। तो शुभ भावना जितना ज्यादा हम किसी के प्रति रखते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे अंदर नहीं आता है। अगर शुभ भावना हमने उसके प्रति रखा ही नहीं, और बात तो उसके प्रति कभी मुख से टंडिंग कभी मन से टंडिंग करते रहते हैं, उसको भूलते रहते हैं, उसको आघात पहुंचाते रहते हैं। आघात तो उसको पहुंचता नहीं है, पहुंचेगा तो कब पहुंचेगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले आघात तो हमारे ऊपर ही आ जाता है। इसीलिए उड़ना चाहते हैं तो भी उसका अनुभव नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत एनर्जी चाहिए ऊपर जाने के लिए। ऐसे छोटे मोटे एनर्जी से थोड़ा मन उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उसकी याद आ रही, कभी उसकी याद आ रही, उसमें अच्छी रीति से अनुभव नहीं हो सकता है। संपूर्ण रूप से बड़े से जैसे सचिन डॉक्टर डिटेज होने की बातें करते हैं, ये बातें एकदम सही है। जब तक हम संपूर्ण रूप से शरीर से बाहर निकल के जैसे इस टेबल को मैं देख रहा हूँ ऐसे मैं मेरे शरीर को देख रहा हूँ। तो इस कारण से फिर मैं कई बार प्रयोग किया मैंने इस प्रकार से, तो जैसे मेडिटेशन हॉल में बैठा हूँ तो लोग वहीं से उड़ान भरने लगते हैं, तो उसके कारण से फिर ऊपर जाते हैं तो उस प्रकार का अनुभव नहीं हो सकता है। तो मैंने कई बार ऐसा प्रयोग किया जैसे मैं मेडिटेशन हॉल से बुद्धि से निकल के शांति स्तंभ में गया हूँ, तो वहां से मैंने उड़ान शुरू कर दी ऊपर जाने के। तो जैसे मैं 10 किलोमीटर ऊपर गया हूँ तो धरती को जिस रूप से दिखाई पड़ता है उसी रूप से देखते 50, 100, 1000, 1000 करते करते तब सूक्ष्म बदन में पहुंचते हैं, तो फिर वो जो जैसे करके बुद्धि से रखते हुए आए ना तो फिर वहां भी उसी प्रकार का अनुभव होता है। तो फिर परम धाम में जाए उसका भी इतना बढ़िया अनुभव हो जाता है। तो फिर आते वक्त भी उसी रूप से आना है। तब तक तो इस तरीके से जाते हैं तो फिर आते वक्त भी अटेंशन रहता है कि मुझे उसी रूप से उतरना है। तो फिर उतरते वक्त में वहीं आकर के लाइट की बॉडी में फिर अंदर आकर के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो प्रैक्टिकल भी कभी होता है कि जैसे कि ये कुर्सी टेबल अलग है, मैं अलग हूँ, अब मैं इसके अंदर जाकर प्रवेश कर रहा हूँ। तो इसका अनुभव इतना बढ़िया, तो 3-4 साल से बीच में चल ही रहा था मेरा। तो फिर अभी वो अनुभव भी अभी आकर के लगता है कि योग में चिंतन का जो प्रयोग करते हैं उससे कहीं गुना बेटर है। लेकिन नॉलेज होना तो सभी तरफ का चाहिए, इसीलिए नॉलेज तो जरूरी है। इसीलिए हम सब चाहते हैं कि मधुबन में सेवा करने को मिल रहा है, हम सबको आने वाले भी खुश होते हैं। पहले पहले हम मधुबन में जब आए थे कई प्रकार के प्रॉब्लम हुए, कभी तो भाषा का प्रॉब्लम हमें बहुत तंग किया। हमारे इंसान पंजाब साइड के थे उस समय, तो बात क्लियर करके नहीं बोलते थे, जैसे कि धकेल देते थे।
मारुति वाले
तो क्या हुआ, जो आए वो कभी एक आध मान साले हुआ था, माना 5-6 महीना
हुआ था,
5-6 महीना। तो वो मेरा मुझे तो अपना स्टोर का चाबी दे दिया, इतना बड़ा गुच्छा। उसके बाद मैं सोचा कि स्टोर में मेरा काम होगा, ज्यादा इधर उधर चलने की उतना जरूरत नहीं है। लेकिन फिर मैं बीच में वो सचेत करते थे तुमको बीच बीच में जाकर के मजदूर के बीच में भी रहना है, मिस्त्री के बीच में भी रहना है। तो यहाँ संत स्तंभ के आगे मनोहर दादी और संत मणि दादी का रूम बन रहा था उस जमाने में। तो फिर मेरे को बाहर मिलते थे तो तुम जाकर के मारुति के आगे खड़ा क्यों नहीं होता है मारुति। फिर मैंने सोचा मारुति कहाँ है यहाँ, सब तरफ ढूंढता रहा। तो शांति स्तंभ के आगे एक मारुति सदैव तैयार रहता था। तो फिर वहां जाके खड़े रहा बोला। तो फिर जाकर के वहां खड़े रहा, 1.5 घंटा हो गया, कुछ होता ही नहीं, कोई आता भी नहीं, कोई जाता भी नहीं। उस दिन का फिर पाठ पूरा हो गया, 3 दिन हो गए कंटिन्यू। तो फिर एक दिन बोला मारुति के पास क्यों खड़ा नहीं होता है जाके। फिर जाके खड़ा हुआ, नंबर सब देख रहा हूँ उसका, आगे पीछे कुछ है नहीं। तो फिर एक दिन उधर ही टाइम मिल गए, वो मारुति तो अंदर काम कर रहे हैं, वहां जाके खड़े हो जाना। तो मारुति इतना बड़ा अंदर कैसे चला गया। तो फिर मैंने जाकर के वो भाई को पूछा कि मारुति अंदर कहाँ है, बोला। उसने बोला मेरा नाम ही मारुति है। तो 3 दिन के चक्कर पर मैं मारुति आगे पीछे ही घूमता रहा। तो फिर ये भाषा का प्रॉब्लम और जो नॉर्थ साउथ का भाषा तो अपने अपने महत्व रखता है, इस कारण से साधन उसने उसने आगे पीछे मिला होता तो मेरी अच्छी बिची क्लास भी हो जाती। लेकिन वो बोल के चले जाते थे, फिर मैं वहां करता, फिर इधर उधर घूमता। फिर बाद में जब समझ में आया कि सब तरफ से घूमना समझना जरूरी है,
मुक्ति हुई।
तो फिर उस बातों से मुक्ति हुई और भी कई सारे प्रॉब्लम आते रहे। इसीलिए हम सब समझते हैं कि खुशी तो मधुबन के रहने वालों को नेचुरल होनी चाहिए, लेकिन नेचुरलता के साथ साथ में हम उसको कायम रखना कितने सकते हैं सारे दिन भर। तो इसीलिए अभी धारणा ही बना लिया कि हम जैसे रेलवे स्टेशन के आसपास में मकान होते हैं, कई सारे लोग रहते हैं, उनको भी तो रेलवे का जो आवाज तो पहुंचता ही होगा, उनको भी तो सोते होंगे जागते होंगे। तो मैंने मेरे रूम के पास ही बहुत सारी 2-3 आयरन का जो प्रेस में रखा हुआ है, वहाँ बहुत सारी हंगामे चलती है माताओं की। तो बोलेंगे तभी, अभी 4 लोग बोल रहे हैं, मैं उठ के उसको अगर डांटू कुछ कहूँ तो 4 लोगों का नेगेटिव वाइब्रेशन मेरे ऊपर आ रहा है और पहले से नींद मेरी खराब। तो इसीलिए बोला कि मैं वो सोचता हूँ कि रेलवे के लाइन में जैसे कि प्लेन के लाइन में लोग रहते हैं, गाड़ी के लाइन में लोग, उनका भी तो जीना सोना जागना होता है। अभी मुझे यही करना है। अभी 2-3 साल से ये हो गया कि मुझे कितना भी कोई हल्ला करेगा मैं उनको जाके नहीं बोलता, करने दो अभी तो। तब तक मेरी परीक्षा हो रही आता है कि नींद में देखता हूँ। तो इस तरीके से चेक करता हूँ तो बड़ा मजा आता है। हर बात में पॉजिटिव लेने का लक्ष्य रखा है, तो पॉजिटिव लेने से नेगेटिव शक्ति तो हमारी सारी एनर्जी की लॉस करता है। तो पॉजिटिव कुछ भी हो जाए, एक भी थॉट मुझे खराब नहीं करना है, ये ध्यान रखता हूँ।
एक वो सुना था तो आप बहुत रोए थे प्रदर्शनी में जब।
अच्छा, तो फिर लंबा चैप्टर है,
शॉर्ट में
अच्छा। तो ज्ञान में आने से पहले मुझे भी 5 से 8 धर्म का सर्च करने का मौका मिला था, क्योंकि कौन सा धर्म में क्या होता है और यहाँ कहाँ भगवान मिलते हैं, इस प्रकार की काफी सर्च की गई। लास्ट में क्रिश्चियन धर्मों को एडॉप्ट करने ही मैं जा रहा था,
क्रिश्चियन धर्म,
तो 6-8 मास तक वहां भी गया। तो फिर 3-4 साल पहले से कई बातें, जैसे भगवान पूर्व तैयारी करते हैं ना अपने बच्चों को जब बनाना होता है, कई बातें से मुक्ति दिलाते हैं, तो कई सारी बातें में चेंजेस वैराग्य खूब आया था। तो उसके कारण से मैं जहां भी धर्म में जाता था, जिस भी धर्म में जाता था, वहां जाकर के फास्ट रीड करता था कि इसको क्या मिला। सबसे पहले मैं व्यक्ति को ही देखता था, क्योंकि किताब पढ़ने लग जाऊंगा तो इनकी कितनी भारी है, कितनी किताबों से सजा होगा, उसमें हमको कोई लेना देना नहीं, प्रैक्टिकल में करके इसने क्या किया। तो उससे छोटे उससे बड़े उससे करके देखता था, उनके पास में भी कुछ नहीं। तो 8 धर्मों का सर्च करने के बाद में हरिद्वार आने के लिए मैं तैयार था। अब किताब जम के पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, भगवान मिले न मिले बकवास झाड़ते चलेंगे, ये सोचा मैं। आखिर क्या है, कहीं मिलता रहा है नहीं रहा है। तो फिर निकलने के लिए 7 दिन बाकी था, तो उसी समय बालों का प्रदर्शनी लगा हमारे गाँव में। 3 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के हमारा दीदी लोग वहीं पर आ गए, तो जैसे समझता हूँ कि मेरे लिए आए होंगे, क्योंकि मैं 7 दिन के बाद निकलने ही वाला था। तो फिर खूब उन लोग प्रदर्शनी के लिए अनाउंस करके घूम रहे थे कि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनका नाम क्या है। तो मेरे को बोला, अच्छा ना, ये तो बहुत अच्छी बातें सुना रहे। तो फिर उस दिन तो जिस दिन प्रोग्राम था उसे मेरे काम के कारण से नहीं जा पाया। तो दूसरे दिन सुबह ही 3-4 भाई आ गए, तुम बैरागी आदमी, तुम कल तो प्रोग्राम में गए नहीं, तो आज तुमको चलना है, तेरे लिए है, ऐसा करके मेरे को ले गया। तो लेके गया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो चित्र देखते गए वो तो जैसे लग जाएगी मेरे लिए ही। तो 7 बजे गया तो 10 बजे तक बैठा रहा, जितनी भी प्रदर्शनी होता था सबको सुनता था, मेरे लिए एक बार सुना के छोड़ दी। तो फिर औरों का होता था, मैं देखते देखते काफी मजा आ गया। तो फिर अपने काम में गया आया, तो 7 दिन कोर्स पूरी हो गई। हम लोग 500 लोगों ने कोर्स किया, लगभग टोटल 500 लोगों ने तैयारी में कोर्स किए थे। तो टोटल तो क्या हुआ, फिर कोर्स पूरा हो गई, 1 महीना पूरा हो गया। तो फिर किसी कारण से मुझे दूसरी जगह जहां मैं ड्यूटी दे रहा था, सामान पहुंचा रहा था, उसका पिताजी ने शरीर छोड़ा। उसने बोला मेरे को तुम 15 दिन हेल्प कर, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि मैं जाऊंगा तो ये दुकान कौन चलाएगा। तो सारी दुकान का सामान का तो मेरे को एक एक पता ही था। तो 15 दिन तक उसका दुकान चलाया। तो बहने ने बोला था कि हम यहीं रुकेंगे, अगर कहीं जगह है तो देखो, बोला। तो उस एरिया में मैं नया नया था, तो चारों तरफ गया, देखा कोई जाना पहचाना तो है नहीं। तो इसी कारण से सुने अनसुने करके मैं उधर ही, अब उसने खींच लिया, मेरे को बुला लिया। तो 15 दिन बैठे, तब तक अंदर में जैसे कि भाव पैदा होती थी कि मैं कब जाऊं और कब मिलूं इनसे। तो इस कारण से डेली वहां भी इस एरिया में छोटा सा गीता पाठशाला में एक माता बैठती थी, वहां जाके सुनते थे हम। तो 15 दिन के बाद आया, जहां पर प्रदर्शनी लगी थी, जहां पर कोर्स किए थे, वहां पर जाके देखता हूँ तो स्कूल खुल गया था, स्कूल में प्रोग्राम था। तो फिर सारे बच्चे अंदर से बाहर निकल रहे, पहले तो शांति से यहाँ कितना काम होता था, लोग इतने आते जाते थे, ये कहाँ गए होंगे। तो देखा तो है ही नहीं। तो स्कूल की मैडम, उसने भी कोर्स लिया था तो उसको पहचान था, तो उन लोग को जाके पूछा ये कहाँ गए दीदी लोग। बोला कि ये लोग तो कहीं ऊपर नहीं, छोटा सा घर मिल गया है, वो लोग यहाँ रुके हुए। तो उस दिन चारों तरफ खोजा था, मेरे को कहीं मिले नहीं। फिर बाद में पूछा उसको, तब तक फिर मैं गाल में हाथ लगा के बैठ के, जैसे कि आंखों से पानी आ रहा है, ऐसे हृदय विजीर्ण हो गया, मैंने क्या गलती किया इनको, पहले तो इनको मकान ढूंढ के देना चाहिए था, मैंने गलती किया उधर जाके। तो फिर जाके मैडम को पूछा था, उन्होंने बोला कि यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर यहाँ ऐसे खुला हुआ। फिर तो मेरी खुशी का पारवार नहीं रही, तब से लेकर के अब तक कंटिन्यू बाबा के चलते चलते यहाँ पहुंचे। बाबा ने पहुंचाया, यहाँ भी पहुंचने का कोई सब मन में था, लेकिन स्वप्न में देखा नहीं था कि मैं यहाँ पहुंच पाऊंगा। और बाबा की सेवा कर पाऊंगा। इस तरीके से जैसे कि भक्ति का तो चैप्टर लंबा ही है, तभी थोड़ी दो बार कभी राउंड मिल जाता है तो सुनाइए। ओम शांति।
ओम शांति। एक बात जो बहुत अच्छी सुनाई, कहते हैं कि बाबा कहते हैं मुरलियों में कि सभी को ज्ञान का इंजेक्शन लगाओ, परंतु यदि ज्ञानियों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाया जाए तो कहते रिएक्शन होता है। इसके लिए किसी को भी अगर ज्ञान सुनाना है और वो ज्ञानी है तो बहुत सोच समझ के सुनाना होता है। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे जीवन में होती है कि जो बाबा ने कही है हमने मुरलियों में सुनी है, परंतु हम जब देखते हैं कि दूसरे उसका पालन नहीं कर रहे तो हमको लगता है तुरंत उसको शिक्षा दी जाए, तुरंत उसको समझाया जाए, उसको बताया जाए। ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिसको कहा जाता है अलिखित नियम। जैसे हम उस दिन भी चर्चा कर रहे थे, अलिखित नियम है बहुत सारे ब्राह्मणों के जैसे, और ये ऐसे नियम है कि हम अगर किसी को कहे ये करो तो वो रिएक्ट करता है। इसके लिए किसी को न कहना यही सबसे उत्तम है। जैसे बाबा ने कहा अगर किसी को शिक्षाएं भी देनी है तो एक मुरली चली थी। सबसे फर्स्ट स्टेप उसकी गलती को भूल जाओ, उसकी कमी कमजोरियों को भूल जाओ। सेकंड स्टेप उसकी महिमा, और थर्ड स्टेप है शिक्षा। हम क्या करते हैं, पहली दो स्टेप को भूलकर सीधा थर्ड स्टेप किसी को करेक्ट करना चाहते हैं, इसके लिए वो रिएक्ट कर दिया।
टाइम थोड़ा
टाइम थोड़ा है। तो ऐसे बहुत सारी, जैसे देवेंद्र भाई ने मुझे सुना है अपना पर्सनल अनुभव, अगर हम किसी को करेक्ट करने चाहे, कोई टीवी देख रहा है और अगर हम उसको कहे कि टीवी न देखो, कोई टीवी मोबाइल पे लगा हुआ है हम उसको कहे कि मोबाइल इतना यूज न करो। मुझे याद है एक बार नीचे अव्यक्त बाप दादा आए थे, और अव्यक्त बाप दादा जाने के बाद भोजन पर हम लोग कुछ लोग बैठे थे, तो वहां पे तुरंत दो भाई क्रिकेट की चर्चा कर रहे थे, क्रिकेट के बारे में डिस्कशन चालू था कि क्रिकेट में क्या होगा क्या होगा। तो एक बहुत ही बुजुर्ग भाई वहां बैठे थे, तो उनको समझाने लगे कि भाई अभी अभी तो बाबा की मुरली आपने सुनी, तो बाबा की मुरली के बारे में चिंतन करना चाहिए, ये आप कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हो। तो वो दोनों भाइयों ने उस बुजुर्ग भाई को इतना सारा सुना दिया कि ब्रह्मा बाबा भी क्रिकेट ये खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, इसके लेके तो बहुत सारी बातें सुना दी, तो वो चुप हो गया। तो ये बहुत, मतलब हम सब धारणाओं का पालन करें परंतु सबके प्रति केवल शुभ भावना रखें। हम किसी को अगर करेक्ट करने गए तो सबसे पहले तो वो उस भाव से उस चीज को नहीं देखेंगे कि हम चाहते, वो चाहेंगे वो हमारी गलती निकालेंगे। हम अगर किसी को कहे कि टीवी ना देखो तो वो कहेगा कि तुम भी देखते हो। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं। एग्जाम्पल के तौर पर योग में हम बैठे हैं, एंट्री किया, एंट्री करने से चालू होता है, कोई लोग जोर से दरवाजे का आवाज करते हैं और फिर एंट्री करते हैं। एक कोई बैठेंगे भी सोफा पे तो इतना जोर से आवाज करेंगे बैठते समय, तो हमें ये सब देखना है बस। अच्छा चलो फिर भी ठीक है। फिर मोबाइल से रिलेटेड बहुत सारी श्रीमत है। एक तो सबसे पहले कई लोगों का मोबाइल क्लास में बजता है, योग में बजता है, अच्छा चलो बजा तो भी ठीक है, परंतु हम ये सोचते हैं कि वो उसने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, साइलेंट पे क्यों नहीं रखा, परंतु वो बजेगा, इसको हमको स्वीकार करके चलना है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, बजेगा, किसी का बजता है, फिर बजते बजते वो उठा, ढूंढने में पांच मिनट माता हो
माता बेचारी क्या करेगी,
समझ में नहीं आता है, तो मोबाइल को ढूंढने में फिर उठाने में, अच्छा चलो उठा भी लिया, फिर वो बाहर जाएगी, बाहर चला भी गया, फिर वहां से हेलो करके जोर से आवाज जो अंदर के सब लोगों को सुनाई देती है, और करते करते भी आके, ये तो चलो ठीक है माताओं को जिनको मोबाइल का ज्यादा समझ में नहीं आता है, परंतु कभी कभी वाइब्रेट मोड पे भी रखते हैं तो वो भी इतना जोर से बजता है उसकी आवाज, उसकी वो उस तरह की आवाज, अच्छा चलो आवाज आ भी गई। केवल नए लोग नहीं, जो पुराने हैं कई सालों से योग कर रहे हैं उनके साथ भी इस तरह की बातें होती है, और हम उनको बता नहीं सकते कि ये करो। अच्छा कोई एक दिन सोया योग में तो ठीक है, कोई रोज ही सोते है उसके लिए क्या कर सकते है। ऐसी बहुत सारी चीजें है, चलते चलते मोबाइल पे बात करना, ये भी अगर देखा जाए तो ये ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों की शोभा नहीं है, पर हम किसी को कह नहीं सकते, कहेंगे तो तुरंत कहेंगे तुम भी बात कर रहे थे। तो ये ऐसे बहुत सारे नियम है मोबाइल, अच्छा क्लास में हम लोग बैठे थे और बीच में से उठ के चले जाना, ये भी एक जैसे अलिखित नियम इसमें आता है कि अपमान है उस स्पीकर का और उस सभा का। जैसे बाबा भी कहते हैं ना, बाबा को फर्स्ट टाइम जब उधर अपने अनुभव में सुना के बीच में से चले गए, तो जैसे गुरु का अपमान है वो। अगर आपको जाना ही है तो सबसे पहले तो पीछे बैठो, तो वहां से निकल जाए। जाना ही है तो ऐसे जाओ लोग कोई देखे ना, चुपचाप निकल जाओ। वो सबके सामने बीच में से निकल जाना, ये उस सभा के जो लोग है उनका अपमान है। पर यदि हम ये और एक बात है जो हम किसी को कह नहीं सकते, ये अलिखित नियम है जिसका कोई इटिकेट्स जिसको कहते हैं। कोई कोई बात कर रहा है तो हमको अगर जाना है तो पहले तो सभा में जाओ ही नहीं, उस क्लास में, उस लेक्चर में, उस डिस्कशन में जाना ही नहीं। अगर जाना है तो पीछे बैठना। अच्छा, जाते हो तो मोबाइल हमेशा साइलेंट, अगर हो सके, अगर इमरजेंसी नहीं है तो बंद ही करे तो सबसे बेस्ट है। बंद कर दे, वाइब्रेट पर रखे। वो मैंने तो ये लक्ष्य रखा है कि मेरा मोबाइल जो है खाली जब मैं कमरे में होता हूं तो ही वो ऑन रहे, मतलब साउंड मोड पे होता है, बाकी वो हमेशा ऑल द टाइम वाइब्रेट पर रहता है। क्योंकि कई लोग बैठे हैं और उसके बीच में मोबाइल बजना, या कई लोग बैठे हैं और बीच में जोर से मोबाइल बजना, या दो लोग तीन चार लोग भी है उसमें भी वो भी मोबाइल के शिष्टाचार के विरोध में। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें, चाहे मोबाइल से बातें हो, चाहे योग की बातें हो, चाहे क्लास की मुरली की बातें हो, कोई रोज होता है। अगर हम किसी को करेक्ट करें कि उठो, तो वो अवसर देखेगा कि ये कब सोता है और कब मैं इसको उठाऊं। क्योंकि बदला तो कोई अगर सोता है सोने दो, किसी का मोबाइल बजता है बजने दो, कोई बीच से निकल कर जाता है जाने दो, कोई निरंतर इंटरनेट पे लगा रहता है लगने दो, कोई अगर टीवी देखते रहता है जबकि बाबा ने कहा टीवी नहीं देखना है देखने दो। क्योंकि वो भी ज्ञानी है हम भी ज्ञानी है, उसे भी पता है कि श्रीमत क्या है, और श्रीमत पर चलना ही सच्ची मित्रता है, कल बाबा ने कहा है। तो हम खुद मार्ग पर चले, परंतु हम किसी दूसरों को ये कहे, और जो कि ज्ञानी है, संपूर्ण ज्ञान जिनके पास है, जो यहां रहने वाले हैं, वो मतलब हम ही अपने आप को गिरा रहे। ये भी एक प्रकार की माया, ये एक प्रकार की परीक्षा ही है। क्योंकि ज्ञानियों के सामने माया भी इस रूप से आती है, जैसे कल कोई कह रहा था जो गोभी होती है, गोभी का कीड़ा हरे रंग का होता है, और क्या कहा था दूसरा एक कौन, अमरूद का कीड़ा सफेद का, और जो बीके का कीड़ा है वो भी व्हाइट रंग का ही होता है। तो वो माया जो हमारे सामने आएगी वो सफेद ड्रेस और बैच पहन कर आएगी,
झाड़ को कीड़े लगे आज बोला ना।
तो हमको ये पहचानना है कि ये किस रीति, मतलब हमारे हम खुश है परंतु हमारी खुशी, जैसे सूरज भाई ने एक बार कहा था, एक बहन है, दो बहनें सेंटर पर रहती है, तो एक बहन है वो दो बजे उठ जाती है और दूसरी जो बहन है वो सोती रहती है 5 बजे तक। तो वो जो बहन उठ जाती है 2 बजे की, उसकी ये शुभ भावना रहती है कि ये भी उठे, तो सबसे पहले 2 बजे उठकर वो क्या करती है, बाथरूम में जाकर आवाज करती है बर्तन वो सब, ताकि वो उठे। पर वो जो दूसरी सोई हुई बहन है ये सुनती है तो और अच्छे से सोती है, अच्छा ठीक है फिर भी, और फिर लाइट चालू करती है फिर भी वो सोती रहती है, उसकी ये शुभ भावना है कि वो उठे, परंतु उठती नहीं है। अभी उसके बाद में जब 4 बज जाते तब तक की वो उठती नहीं, तो उसके बेड के सामने जाके खड़े होकर उसके दृष्टि देना चालू करती है, और जब वो सोई हुई बहन है वो जब देखती है ये दृष्टि दे रही तो और बढ़िया सोती है। क्योंकि वो जो छोटी बहन है वो सारे दिन भर काम करती रहती है, सेवा करती रहती है, उसको रेस्ट का टाइम नहीं है, और जो बड़ी बहन है वो आराम ही आराम है उसके पास। तो छोटी बहन ये सोचती है कि ये उठ तो जाती है परंतु योग में तो सोती रहती है, उससे तो मैं अच्छी हूं, मतलब उसकी ये भावना है कि ये उठे, और ये क्या सोच रही है, वो कुछ और सोच रही है उसके बारे में। हमारी तो श्रेष्ठ भावना है कि ये चीजें है, ये श्रीमत है, और ये लोग इसका पालन नहीं कर रहे, परंतु हम अगर उनको करेक्ट करने जाए तो वो हमारी गलती निकालेंगे। इसके लिए ज्ञान मार्ग में अगर चलना है तो सिक सिक झुक झुक मरमर जो कहावत है, हम अपने अपना पुरुषार्थ करते रहे बस, यहाँ किसी को ही नहीं देखना है। अगर यहाँ रहना है और आगे बढ़ना है, अगर हम दूसरों को देखने में लग गए तो फिर हमारा पुरुषार्थ रह जाएगा एक तरफ। इसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल है केवल बाप को देखो बस। बाबा ने तो कहा है ना, ब्रदर्स को नहीं देखो, सिस्टर्स को नहीं देखो, किसी को नहीं देखना है तुमको, केवल बाबा को देखना है। किसी का कुछ भी हो रहा है हमें देखना ही नहीं है, ये अपने अंदर दृढ़ संकल्प कर लो, नहीं तो हमको ही रोना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। चल आशीष भाई, उसके बाद कुछ माता है, कोई बहन है? मेनू करता है
मीना मैन
वो क्या नाम है
मीना मैन है इनका नाम मीना मैन
वो बहन उनका नाम क्या हाँ वो बहन अगला शायद खत्म हो रहा है मुरली नेक्स्ट है मुझे बता नहीं वो उसके बाद
आपके 24 घंटे रह गए बाकी
पांचवा तो हो जाएगा उसके बाद में नई मुरली है ये नई मुरली का दो पैराग्राफ दीप्ति पहने उसके बाद बाबा की मुरली थोड़ी रिवाइज करेंगे 10 तारीख को मेरा 10 तारीख को नहीं 11 तारीख आज 8 है ना तो कल 9 आशीष भाई और 10 को दीप्ति बहन 11 को मुरली रिवाइज करेंगे और 12 को फिर मीना बहन ठीक है ना वो अगले दो पैराग्राफ तीसरा पैराग्राफ पूरा थर्ड पैराग्राफ पूरा ठीक है
फिर लक्ष्मी नारायण भाई
फिर देखेंगे ऑप्शन
देवेंद्र भाई मारू